अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परमानंद आनंद के ये क्षण नित्य प्रति जिनका हम लोग अमृत बेला में आनंद लेते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर की उन महापुरुषों की जिनके तप का जिनके पुरुषार्थ का ये साक्षात भवन प्रेमपुरी भवन है उसका हम लोग नित्य प्रति जो आनंद लेते हैं यही हमारा सर्वोपरि जिसको कहना चाहिए भाग्य सौभाग्य या परम भाग्य है कि हम जो है इस स्थान का आनंद लेते हैं। तो ऐसे सुंदर स्थान में नित्य प्रति सत्संग की जो ये सुधा वर्षा बहती है हमारा वर्तमान में श्रीमद् भागवत दशम स्कंद भगवान की साधारण सी दिखने वाली बाल चपल लीलाएं लेकिन इन बाल चपल लीलाओं में भरा हुआ असाधारण आत्मतत्व अध्यात्म तत्व जिसका हम लोग नित्य प्रति चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान एक एक चीज को अपनी लीलाओं के साधारण लीलाओं के माध्यम से एक साधारण सी बुद्धि में जो बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हो जिसको अध्यात्म का 1% भी या जिसको कहना चाहिए लेश मात्र भी ज्ञान ना हो वो भी इन लीलाओं के माध्यम से अध्यात्म की अखंड गहराइयों को समझ सकता है और प्राप्त कर सकता है। यही भगवान की लीलाओं की विशेषता है। तो हम लोगों ने यज्ञ पत्नियों की कृपा जो भगवान ने यज्ञ पत्नियों यानी ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर जो कृपा की उसके उपरांत कल इंद्र यज्ञ के निवारण का जो लीला का प्रारंभ किया था कि किस प्रकार से भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इंद्र के जो है अभिमान को नष्ट करने के लिए और कर्म का उपदेश, क्योंकि जब तक ये संसार है और जब तक आपका शरीर है ये कर्म आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ना आपका खाना बंद होगा ना पीना बंद होगा और यहां तक कि आपने देखा कि कोई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला महापुरुष भी बीमार हो जाए तो वो चाहे जाना चाहे ना जाना चाहे लेकिन उसके भक्त उसको ले जाकर हॉस्पिटल में क्या कर देते हैं, ना चाहते हुए भी उसको इलाज क्या करना कराना पड़ता है कि नहीं कराना पड़ता। हाँ, तो कर्म ये पीछा नहीं छोड़ते महाराज। जब तक आपका शरीर है चाहे आप साक्षात ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो जाएं ये छूटने वाला नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इस जगत का संचालन है ना, एक बड़ी सुंदर जोरदार चीज है। स्वामी अखंडानंद जी का कोई सत्संग में सुन रहा था या पढ़ रहा था, मुझे अभी याद नहीं है, तो वहां एक बड़ी सुंदर बात वहां थी कि जगत का जो संचालन है चाहे वो साक्षात ब्रह्मज्ञानी राजा बना बैठा दिया जाए, इस जगत का संचालन करने के लिए ध्यान देना भगवान श्री राम ने भी अगर राज्य किया तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ जो है आध्यात्मिक रूप से राज्य किया या नास्तिक रूप से राज्य किया, क्या कहते हैं आप? जगत का संचालन चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या चाहे भगवान राम हो, अलावा नास्तिक दर्शन के कोई रास्ता नहीं है। जगत के संचालन के लिए नास्तिक दर्शन का ही कानून चलेगा और उसका साक्षात प्रमाण माता भगवती सीता को वनवास देना अगर आध्यात्मिक रूप से कभी दिया जा सकता है। भाई अध्यात्म का कानून तो ये है कि सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर क्या कर दो, ये अध्यात्म का कानून है कि नहीं है? लेकिन जो नास्तिक कानून है जिसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, ध्यान देना ये जो हम लोग जिस संसार में जी रहे हैं अगर मुझको भी राजा बना दिया जाए तो मुझे भी महाराज जो है नास्तिकता को ही उपयोग करना पड़ेगा। चोर अगर पकड़ा जाएगा तो उसको क्या देनी पड़ेगी? अब अध्यात्म का कानून तो ये कहता है कि चोर को उसके भाग्य पे छोड़ दो और जिसकी चोरी की हुई है उसको उसके भाग्य पे छोड़ दो। क्यों भाई, अध्यात्म यही कहता है कि नहीं कहता है? कि अध्यात्म में कहीं दंड देने का विधान है? क्यों भाई, दंड देने का विधान है अध्यात्म में? कहीं भी नहीं है। आपको नास्तिक दर्शन ही उपयोग करना पड़ेगा, आप उसके प्रारब्ध को नहीं दे सकते, क्योंकि प्रारब्धानुसार तो महाराज ये स्थिति बनती है कि जो राज्य करने वाला है उसको क्या करना चाहिए, उस जब प्रारब्ध देखता है कि इसकी चोरी होनी थी और इसको चोर बनना था इसलिए इसने चोरी की, इसलिए दोनों को प्रारब्ध के ऊपर क्या कर दो, छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, आपको सांसारिक जीवन में अध्यात्म को एक तरफ रख के महाराज चोर के लिए दंड का विधान करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान देना, इसीलिए कर्म प्रधान ये विश्व कैसा है, हाँ कर्म प्रधान है, क्योंकि आप कर्म से बचकर बिल्कुल जा नहीं सकते और उसका कोई तरीका भी नहीं है महाराज, है ना, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसा विधान भगवान ने नहीं बनाया है कि आप कर्म ना करो और आपका शरीर सुबह जो है अपने आप स्वच्छ हो जाए। क्यों भाई, स्नान करना पड़ेगा कि नहीं करना, अपने हाथ से करोगे या ऊपर वाला नहलाएगा? देखो ये बिल्कुल भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, तो इसलिए भगवान ने जो है दूसरा अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता का, पर इसीलिए अध्यात्म को जो है ना हमारे यहां गूढ़ विद्या कहा गया, इसमें गूढ़ कुछ नहीं है, जब इसमें गूढ़ कुछ है ही नहीं तो फिर गूढ़ क्यों है? ये जो अपरोक्ष ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापी है, हर जगह है, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर समय है, हर क्षण है, फिर उसको समझना क्या और समझाना क्या? क्यों भाई? अरे भाई एक बात बताओ, सामने भगवान सूर्य नारायण निकले हुए हैं और मैं आपको यहां बैठकर ये बताऊं कि सूर्य में प्रकाश होता है, सुनोगे? क्यों भाई? सूर्य बड़ा चमकीला होता है, बोले महाराज आप अपना जो है कथन बंद करो, हम आंख खोल के खुद ही क्या कर लेंगे। क्यों भाई? अपरोक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार यही हुआ कि नहीं हुआ है? जैसे हमको सूरज दिखाई दे रहा है वैसे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराज एक ब्रह्म ज्ञानी को सर्वत्र व्यापक ब्रह्म दिखाई दे रहा, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों भाई? अरे भाई हम सूर्य की कहानी आपको सुनाएं, आप सुनोगे? बैठोगे आप एक घंटा कि सूर्य चमकीला होता है, सुबह जब उगता है तो लाल रंग का होता है, सूर्य जब अस्त होता है तो लाल रंग का, सुनोगे बैठ के कहानियां? तो फिर यहां अध्यात्म कैसे सुन रहे हो आप? क्योंकि वो अपरोक्ष होते हुए भी क्या हो गया, गूढ़ाति गूढ़ हो गया हमारा। इसलिए अध्यात्म विद्या रहस्यमयी अध्यात्म विद्या बन गई महाराज। क्या बन गई? इसलिए भगवान ने गीता में या जितने भी आप श्रुतियों में चले जाओ सब जगह गूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहां तक कह दिया महाराज की जो है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु है तस्याश कथिता हृता प्रकाशन्ते महात्मना, यानी जिसने इस प्रकार से उसको समझा तब उसके हृदय में ये रहस्य प्रकट होंगे, अध्यात्म के रहस्य। इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं, है ना। अपरोक्ष है, अपरोक्ष का मतलब वहां कोई पर्दा है ही नहीं, हर समय है, हर जगह प्रकट है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि यही उसकी गूढ़ता है। और उससे भी बड़ी गूढ़ता यह है कि देखो ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिक हो जाएं तो नास्तिकता का परित्याग कर देंगे। क्यों भाई? आपके यहां चोरी हो जाएगी तो संतोष करेगा कोई यहां बैठा हुआ? कंप्लेंट लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाओगे कि नहीं लिखाओगे? सबको लिखानी पड़ेगी महाराज। आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखाओगे महाराज कि हमारे यहां चोरी हो गई है, और आप चाहोगे, क्यों भाई, चोर आपके यहां आए तो आप उसको नाश्ता कराओगे या है? बताओ। लेकिन महाराज आत्मज्ञानी महापुरुषों को ऐसा करते हुए देखा गया है ना। हम उल्लासनगर जाते हैं, वहां पर स्वामी ओंकारानंद जी महाराज थे, तो उनकी कुटिया में एक चोर घुसा और महाराज वो जो है साथ, पहले पुराने जमाने में कोई कीमती सामान तो कहीं साधारण से चोर होते हैं, तो वो एक छोटी सी घड़ी रखी थी उसी घड़ी को चुरा कर वो ले जा रहा था। देखो जो अध्यात्म वालों का शासन कैसा होता। तो महाराज उस चोर को जो है एक भक्त दरवाजे के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने देखा इसके हाथ में घड़ी है, कोई अजनबी है, पकड़ लिया उसको, और पकड़ने के बाद उसको महाराज जी के पास लाए। सोचे महाराज जी बड़े प्रसन्न होंगे, बोले महाराज ये देखो आपके यहां से घड़ी चुरा के ले जा रहा था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। चोर से कहा बैठो बैठो। बोले अब इसको पकड़ के लाए हो तो अब इसके लिए चाय बना के लाओ। और खाली चाय नहीं लाना, ये हमारा अतिथि है, इसके संग ब्रेड भी लाना। उसने उसको अब जो है देखो है ना, गुरु के ऊपर भी गुस्सा आ जाती। बोले क्या, मैं तो सोच रहा था महाराज जी बड़े प्रसन्न होंगे कि कितना बढ़िया भक्त है, चोर पकड़ लिया और ये कह रहे हैं इसको चाय पिलाओ और नाश्ता कराओ। बोले कमाल की बात है, ऐसा नहीं कि उन्होंने हंसी में टाल दिया, वो गया बेचारा चाय बनाई और ब्रेड गर्म करके लाया, चोर का खाओ। अब देखो चोर जो है चाय पी रहा है और क्या कर रहा है, ब्रेड खा रहा है। ये आध्यात्मिक स्वरूप है हमारा। जिन्होंने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन किया उनका रूल रेगुलेशन चलेगा संसार में। क्यों भाई, स्वीकार करोगे आप लोग हैं? देखो वो मनी मन भगवान अपने साक्षात गुरु भगवान को गाली भी देता जा रहा है कि मैं चोर को क्या पन पिला रहा हूं, चोर को चाय पिला रहा हूं बना के। बोलो संसार में ये चलेगा? नहीं चलेगा महाराज। चाय पिलाई महाराज, और उसके बाद उस आश्रम में उनके उस कुटिया में एक घड़ी और थी। बोले वो घड़ी भी उतार लाओ, और उस चोर को वो घड़ी भी दे दी। बोले ये एक घड़ी हमारी तरफ से तुमको गिफ्ट। बोलो लेकिन जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि क्या वो चोर कभी दोबारा चोरी करेगा? ना उसको सजा देने की जरूरत, ना उसके ऊपर कोई नियम कानून लगाने की जरूरत। लेकिन ये जो अध्यात्म का कानून है, ये किसी के पल्ले पड़ने की चीज यहां साधारण व्यक्ति के दिमाग में नहीं धसेगा। दक्षिण भारत में एक महात्मा थे, महाराज रेलवे स्टेशन में लेटे हुए थे। बचपन में माँ बाप ने उनके कान में सोने की बालियां डाल दी और लेटे हुए थे, तो चोर ने सोचा कि ये बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उसने धीरे से उस कान में पड़ी हुई सोने की बाली को, तो महात्मा को तो किसी को ही पता चलेगा, तो महात्मा समझ गए कि ये जो है इस बाली को लेना चाहता है, तो वो और जोर से खर्राटा मारने लगे, है ना, तो जिससे उसको लगे कि यहां बड़ी गहरी नींद में सो रहा। उसने वो बाली उतार ली और बाली उतार के महाराज बैठ गया। अब वो मन में विचार करने लगा, अगर ये करवट ले ले तो ये दूसरी बाली भी क्या हो जाए, मेरी हो जाए। अब वो महाराज इंतजार करने लगा, महात्मा को समझने में देर नहीं लगी कि क्योंकि 99 का चक्कर है ना, किसी को 99 रुपए दे दो तो 99 के 98 नहीं करेगा, कितने करेगा, हाँ 100 के चक्कर में लग जाएगा। तो वो महाराज बैठ के देखने लगा कि ये गहरी नींद में तो है ही, ये करवट ले ले तो मजा ही आ जाएगा। महात्मा ने कहा चिंता मत करो, और वो एक बाली लेके जैसे ही बैठा वैसे ही महात्मा ने क्या ले ली, करवट ले ली, और उसने प्रेम से दूसरी बाली क्या कर ली। और जब वहां से चला गया तो महात्मा जी उठ के बैठ गए, बोलो चलो माँ बाप की दी हुई जो ममता थी वो भी क्या हो गई। तो ये महाराज अध्यात्म का कानून है। इस कानून से आप संसार में राज्य कर सकते हो? एक दिन भी नहीं कर सकते महाराज, क्योंकि नास्तिक कानून दर्शन दंड का विधान, ये केवल और केवल चोर को कठोर से कठोर सजा है, जो भी अत्याचार हैं जिस प्रकार से भी हैं, आप उनको अध्यात्म के कानून यानी प्रारब्ध के अनुसार नहीं छोड़ सकते हैं। कि प्रारब्ध के अनुसार जिसको जो मिल रहा है उसको वो मिलता रहेगा महाराज, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, ये अध्यात्मिक कानून है। लेकिन जब हम जगत के जो हमारा शरीर है, इस शरीर के लिए जब हम जीते हैं, तब यहां पर कर्मों की बात आती है। और इस कर्मों के जब आप स्वरूप को देखते हैं महाराज, तो देखा जाता है कि कर्मों की दुनिया से बाहर निकलना बड़ा कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है, और इसके फल का परित्याग तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि किसी बेटे को मान लो कोई बच्चा जो है खो गया, अब उसको किसी अमीर माँ बाप ने ले लिया, किसने ले लिया, हाँ किसी अमीर घर में वो बच्चा चला गया, और उसके माँ बाप हैं झोपड़ी में रहने वाले। कुछ दिनों के बाद जब वो 12-15 साल का हो जाए और ये पता चले कि महाराज ये झोपड़ी वाले का बेटा है, इस अमीर माँ बाप का नहीं है, जरा एक बात बताओ, वो क्या वो बेटा उस अमीर माँ बाप को छोड़कर गरीब माँ बाप के यहां जाना पसंद करेगा? है इसको कहते हैं कर्म फल। कर्म का फल जब मिलता है उसका त्याग संभव, हाँ, और अगर गरीब माँ बाप के अमीर बाप का बेटा चला जाए तो तुरंत छोड़ के चला जाएगा, मैं झोपड़ी वाला नहीं हूं, मेरे मां बाप तो देखो। इसको कहते हैं कर्मों का फल, बिल्कुल भी मनुष्य छोड़ने को तैयार नहीं। और इसी चक्र को, क्योंकि द्वितीय अध्याय में भगवान ने जो है अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दे दिया है ना, और उसके बाद तृतीय अध्याय में भगवान ने पूर्णतया जो हमारा कर्ममय संसार है, या जिसको आप जो है नश्वर संसार कहते हैं, नश्वर शरीर कहते हैं, क्योंकि ये जितना भी सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना ये सब नकली नाटक स्वप्न ही तो है। अरे भाई, आज से जब जो है सत्संग भवन की शुरुआत हुई होगी, ये श्रोता यहां कोई और बैठे होंगे, वक्ता कोई और होगा, सब क्या हो गया? अरे स्वप्न हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार से 10-20 बरस बाद हम लोग आप लोग भी क्या हो जाएंगे? तो सत्य क्या रहा? क्यों भाई, है कोई दम? ये सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना ये सब स्वप्न मात्र है महाराज। जब ये वो जान लेता है, ऐसी को कहते हैं विवेक, जब ऐसा विवेक जागृत हो जाता है तब वो कर्मों से मुक्ति पाता है, अन्यथा ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और हमारे अंदर दो प्रकार की अग्नियां रात दिन हवन कुंड की तरह जलती रहती हैं, एक का नाम है कामना और दूसरी का नाम है क्रोध, है ना? यही दो हमारे क्या हैं? परम शत्रु हैं महाराज, जो रात दिन हमको चैन से बैठने नहीं देते। तो भगवान ने जो ये लीला की है, जो भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में पूर्णतया कर्मों का विवेचन करके अर्जुन को सुनाया है कि किस प्रकार से ये कर्ममय संसार जो है प्रारंभ होता है, तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। सबसे पहले भगवान ने गीता के माध्यम से जो है अर्जुन के माध्यम से हमको आपको समझाया कि जब कर्ममय संसार में आपको कर्म किए बगैर रहना ही नहीं है, है? तो एक ही तरीका बचता है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग, यानी आसक्ति रहित होकर कर्म करो, और इसका परिणाम ये होगा कि तुम जो है पूर्णतया जीवन में रहते हुए मुक्ति का लाभ लोगे और संपूर्ण कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने इसी क्रम में इस कर्म की, क्योंकि जो कुछ भी हम आप भोग रहे हैं या हमारा आपका जो शरीर है, ये सब केवल कर्मों के माध्यम से ही हमको मिला है, कोई इसका दूसरा कारण नहीं है। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्धम एष वोस्तिष्ठ काम दुख। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में हमारे यहाँ, जैसा कि आप लोग सुनते चले आ रहे हैं कि आदम हुआ या एडम ईव जो है इससे, लेकिन हमारे यहाँ जो सृष्टि का क्रम है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा प्रजोवाच पुरोवाच प्रजापति, भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना यज्ञ से प्रारंभ की, और उन यज्ञों के द्वारा उन्होंने जो है देवताओं को जो है रचा, और सबसे पहले जब देवता प्रकट हुए तो देवान भावितानेन ते देवा भावयंतुवा परस्परम भावयंता श्रेया परम वापिशत। ये कर्मों के गूढ़ रहस्य को ब्रह्मा जी ने समझाया कि इन देवताओं को जब आप प्रसन्न करेंगे यज्ञ के द्वारा, तो महाराज ये जो यज्ञ है ये क्या करेगा, देवताओं को प्रसन्न करेगा, और देवता जो है आपको प्रसन्न करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। जैसे अन्न है, अन्न को हम उपजाते हैं और फिर वही अन्न हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, अन्योनाश्रित हो गए, जिसको कहते हैं एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना। तो महाराज इस प्रकार से जो है ये देवता और तुम दोनों यानी प्रजा दोनों मिलकर एक दूसरे की क्या करो, वृद्धि करो। इसका परिणाम ये होगा ईष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। कहते हैं बिना मांगे तुम्हारे इष्ट जो तुम्हारा हृदय की इच्छा है उस फल को वो तुमको प्रदान करेंगे। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेने वसा, उसमें से कुछ हिस्सा तुमको दूसरे को भी देना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो तुम जो है स्तेन यानी चोर कहलाओगे महाराज। और जो ब्रह्म ज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु हैं, उनके लिए फिर ये नियम आता है, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा, है ना? इस जो अन्न जो हमको मिला है या इस कर्म से प्राप्त हुए या कर्म यज्ञ से प्राप्त हुए जो भोग हैं, इसमें से दिया यज्ञ शिष्टः सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। इस यज्ञ से प्राप्त हुए भोगों को जो जिज्ञासु पुरुष है या ब्रह्मज्ञान की राह में बढ़ने वाला पुरुष है या साधारण लौकिक पुरुष की भी बात की जाए, तो इसमें से कुछ त्याग के उसके बाद जो उसका उपयोग करता है मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो केवल इन भोगों का स्वयं के लिए उपयोग करने लगता है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, है ना, ये जो है क्या कहलाता है, अपने लिए जो कर्म करता है या उस भोगों का उपयोग करता है, वो साक्षात अपने पापों को ही खाता है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने पुनः एक बार इस सृष्टि क्रम को समझाया। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कहते हैं अन्नाद् भवति भूतानि, हमारी आपके शरीर की रचना किसके द्वारा हुई, अन्न के द्वारा, और ये अन्न किससे उत्पन्न हुआ, पर्जन्यात्, पर्जन्य बारिश के द्वारा, वृष्टि के द्वारा हमको क्या मिला, जल के द्वारा क्या मिला, अन्न मिला, अन्न से क्या बना, हाँ, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और ये जो बारिश है ये किसके द्वारा संभव है, बोले यज्ञ के द्वारा। बोले ये यज्ञ क्या है, यज्ञ कर्म समुद्भव, जो आपके कर्म हैं यही साक्षात यज्ञ है। यानी जैसे आपके कर्म होंगे वैसे जल देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, उसी प्रकार का अन्न आपको प्राप्त होगा और उसी प्रकार का शरीर आपको क्या होगा, मिलेगा महाराज। तो इस प्रकार से ये कर्म जो है क्या कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यानी ये जो ब्रह्म भाव हम लोग जिसको जो है श्रवण मनन चिंतन के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं, ऐसा ये जो कर्म है कहीं और से नहीं, ब्रह्मोद्भवम यानी वेदों से उत्पन्न हुआ है ना। इसीलिए वेद में जो है 80% जिसको कहते हैं 80% भाग कर्म यानी यज्ञों का विधान है, उसके बाद जो है लगभग 15% जो है या 15% भाग जिसको हम लोग कहते हैं उपासना कांड है, और शेष बचा 4% भाग क्या बचता है, ज्ञान कांड बचता है, जिसको आप लोग उपनिषद विद्या कहते हैं। लेकिन वहां पर भी अन्न का जो है ब्रह्म रूप से दर्शन किया गया। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये कर्म कहां से, वेद से उत्पन्न हुए हैं, और ये वेद कहां से आया, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ये ब्रह्म किससे, उस अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। वेद कहां से आए, अक्षर ब्रह्म ने दिए कि नहीं दिए, जो कभी ना समाप्त होने वाला अखंड अनंत सत्ता है, वहां से महाराज वेदों की उत्पत्ति हुई। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए वो ब्रह्म जो है कैसा है, सर्वगत है, किसी चीज में ऐसी जगह नहीं है, कोई वस्तु पदार्थ जीव ऐसा नहीं है जहां पर वो ब्रह्म ना हो। यानी तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ऐसा जो सर्वगत ब्रह्म है नित्य निरंतर यज्ञ में प्रवर्तित है। अगर इस चक्र को आप नहीं मानेंगे, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति या अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सा जीवति, अगर इस जो प्रकृति से मिला हुआ चक्र है इसकी आपने अवहेलना कर दी, अगर इसका जो है आपने सम्मान नहीं किया, अघाय और इंद्रिया रामो, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो है पाप से युक्त हृदय, इंद्रिया रामो, इंद्रियों के सुखों में ही फंसा हुआ व्यक्ति जो है क्या करता है, मोघम पार्थ सा जीवति, उसका जीना मरना बराबर है, वो जीवित भी मृत तुल्य है ना। तो ये प्रकृति चक्र है महाराज, कि वास्तविकता में जिन इष्ट जो हमारे इष्ट भोग हैं या हमारी जो मन की कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं देवता, ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म से कहीं तुम इच्छा मत कर बैठना, हम लोग तो ब्रह्म से भी इच्छा कर बैठते हैं, क्यों भाई, है ना। हमारे कर्ममय संसार के नियंत्रण करने वाले कौन है, देवता है ना। और उन देवों में जो हमारे महादेव हैं, तीन महादेव कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और, अरे देव शब्द में महाशब्द जुड़ गया तो क्या बन गया, महादेव। महादेव केवल भोलेनाथ का नाम नहीं है, ये तीनों देव जो तीनों सारे देवताओं से सर्वोपरि हैं, इसलिए उनको हमने क्या कहा? अरे भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ना, ऐसे ही तो चलता है, है? महा महाधिपति, अधिपति और उसमें महाशब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? महाधिपति बन गया। तो इसी प्रकार से देव शब्द के संग जो है क्या जुड़ गया? महाशब्द जुड़ गया, तो महान देव हो गए। तो तीन महान देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ये महादेव कहलाए, है ना। बहुत सी चीजें हम लोग अलग अर्थ में ले लेते हैं क्योंकि वो प्रचलित शब्द हैं, और उन प्रचलित शब्द को अगर किसी से कह दो कि विष्णु भगवान महादेव हैं तो वो बेचारा घबरा जाता है, है? बोले विष्णु भगवान महादेव नहीं है महाराज, भोलेनाथ का नाम महादेव है। ऐसा हम लोग जो है कि विचलित तो हो जाते हैं, है ना। जैसे इसी प्रकार से आत्मा शब्द में क्या लग गया? परम शब्द लग गया, तो क्या बन गया? परमात्मा। आत्मा रूप से वो भिन्न दिखाई देता है और परमात्मा रूप से वो क्या हो जाता है? एक हो जाता है महाराज। तो जब परम लग गया तो एक परमात्मा हो गया, और जब वो भिन्नता रूप में एकम बीजम बहुधाया करोति हुआ, तो महाराज वही आत्मा जो है परमात्मा क्या बन गया? आत्माओं है। हम लोग क्या है बहुवचन लगा देते हैं, आत्माओं कह देते हैं महाराज। तो वास्तविकता में कहने मात्र को केवल ये भिन्नता है, लेकिन वहां कोई भिन्नता नहीं है। तो जो हमारे भोगों का या सांसारिक जीवन का नियंत्रण है किसके पास है? अरे भाई देवताओं के पास है कि नहीं है? आपके जल देवता आपके जल की आपूर्ति करते हैं, आपकी प्राण वायु, वायु देवता आपके प्राण वायु का निर्धारण करते हैं। इसीलिए देखो जो है भृगु ऋषि ने एक एक चीज में ब्रह्म का दर्शन किया। जब उन्होंने सबसे पहले देखा कि सारी सृष्टि की मालिक तो महाराज अन्न ही दिखाई देता, तब उन्होंने अन्न को ब्रह्म कह दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अन्न बड़ा सुंदर हो लेकिन महाराज उस शरीर में प्राण ना हो तो वो कुछ कर सकता है? तो उन्होंने कहा प्राण ही सब कुछ है, इसलिए उन्होंने कहा प्राण ही ब्रह्म है महाराज। उसके बाद जब देखा कि प्राण भी हो और शरीर भी ठीक ठाक हो और उसका मन क्या हो, है ना, बिल्कुल डामाडोल अवस्था में हो, तो महाराज ये बिना मन के तो कुछ भी संभव। तब उन्होंने कहा कि अन्न और प्राण से भी बड़ा कौन है? मन है महाराज। तब उन्होंने मन को जो है ब्रह्म घोषित कर दिया। जब उन्होंने देखा महाराज पुनः तप करके है और बार बार अनुसंधान करके, तो महाराज देखा कि मन भी हो अन्न भी हो और प्राण भी हो, लेकिन अगर बुद्धि ना हो, जैसे किसी पागल व्यक्ति की आप शादी कर दो, उसके विवाह करने से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है महाराज। तो अगर आपका विज्ञान यानी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो ये सब चीजें निरर्थक हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये बुद्धि ही ब्रह्म है। लेकिन महाराज जब उन्होंने देखा कि ये बुद्धि भी जब तक है, अगर मैं इस हाल में ताला लगा दूं है और इसकी सारी जो है लाइटें ऑफ कर दूं, दो दिन बाद आपकी क्या दशा होगी? है क्यों भाई? और दो दिन के बाद मैं कहूं कि आओ बैठ के हम लोग ब्रह्म ज्ञान की क्या करें? बोले पहले इस महात्मा को मार के बाहर निकालो। है क्यों भाई? समझ में आएगा ब्रह्म ज्ञान उस समय? क्योंकि आपका सब कुछ तन भी मन भी प्राण भी और बुद्धि भी क्या दे चुके होंगे, सब जवाब दे चुके होंगे। और जब तक ये बुद्धि उन्होंने देखा आनंद को प्राप्त नहीं कर लेती है, ध्यान देना, जब तक आपको साउंड स्लीप जिसको विज्ञान की भाषा में कहा जाता, जब तक वो नहीं आती है, आपको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा लगता है? समझ में आएगा अध्यात्म? आपको मैं तीन दिन तक जगाता रहूं, सब बंद कर दूं, यहां का लाइट पानी महाराज क्या दशा होगी? तीन दिन के बाद अध्यात्म क्या आपको अपना शरीर भी समझ में नहीं आएगा? ये आनंदमय कोष की जब उन्होंने देखा कि महाराज कि इस आनंद को जब तक वो हमारा ये जीव स्वरूप जो हम लोगों ने कर्मों का रचा हुआ ये शरीर है, जब तक हम इसके परमात्मा के संग 24 घंटे में एक बार पूरा, चाहे वो आस्तिक हो और चाहे वो नास्तिक हो, जब तक एक बार जोड़ नहीं देता है महाराज उस आनंद के संग, तब तक वो फ्रेश नहीं होता है। जिसको आप लोग ना फ्रेश हो गए, ये जो आप फ्रेशनेस जो आप जो है आनंद की अनुभूति करते हैं, बिल्कुल अच्छा लगने लगता है। जब आपको गहरी निद्रा आती है महाराज और सब कुछ स्वप्नावस्था से भी जागृत अवस्था से भी हटके बिल्कुल गूढ़ अवस्था में चले जाते हैं, और वहां पर आपको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता। आप लोग कहते हो नहीं, ये मेरा 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 क्या रह जाता उस समय आपके पास? बोलो, मकान दुकान धन संपत्ति तो एक तरफ रख दो महाराज, उस समय तो आपको अपने इस सुंदर शरीर का भी होश नहीं रहता है कि मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है महाराज, हैं? देखो रहता कुछ होश? ये है आनंदमय। जब उन्होंने देखा कि आनंदमय कोश, जब तक ये बुद्धि महाराज उससे एक बार जुड़ती नहीं तब तक ये शांति को प्राप्त नहीं होती, तब उन्होंने जाके कहा कि आनंद ही महाराज जो है क्या है, साक्षात ब्रह्म है। तब उनके पिता ने वरुण ने कहा कि हाँ अब तुम जो है ब्रह्म के नजदीक पहुंच गए, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ खोजने के लिए रही नहीं जाता। जिसके संग जुड़ने के प्रयास जो हम लोग करते हैं नित्य प्रति सत्संग के माध्यम से, भगवान जो यहां समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा भोजन तब बनेगा जब तुम अग्नि जलाओगे, है ना? क्योंकि अगर आप दाल चावल बाजार से खरीद लाओ और 500 रुपए किलो का चावल हो और 500 रुपए किलो की दाल हो लेकिन वहां पर अग्नि ना हो तो क्यों भाई, बन जाएगा दाल चावल, भर जाएगा आपका पेट, तो वो कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने यहां पर ये लीला की है महाराज, बहुत सुंदर लीला है। और इसी को श्रुति की भाव जो है भाषा में अगर आप समझना चाहें तो केन श्रुति कहती है तस्सई तपो दमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तस्सई उस ब्रह्म विद्या के कौन कौन से अंग हैं? तस्सई तपो तप, तस्सई तपो दमा इंद्रियों का दमन, कर्मेति ये जो निष्काम कर्म है ये, और महाराज वेद वेदों का ज्ञान, ये सब जो है उसके आधार है। प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी अपने अंगों के संग संपूर्ण वेदों का ज्ञान, ये उस ब्रह्म विद्या के अंग हैं। इनके बिना ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना संभव नहीं है महाराज, ये श्रुति कहती है। और भगवान ने यहां पर जो हमारा कर्ममय संसार है जिसमें हम सुख दुख की कल्पना करते हैं, और एक जल जो हमने प्रारंभ में भी चर्चा की थी कि हो सकता है कि थोड़े दिन बाद, आपको पता है कि हैं, थोड़े दिन के बाद आपके यहां जल जो है इम्पोर्ट करके लाना पड़ेगा, इम्पोर्टेड जल। अभी बड़ा शौक है ना आप लोगों को, हर चीज कैसी चाहिए, बोले ये इम्पोर्टेड है, कैसा है? हाँ, थोड़े दिन के बाद जल भी कैसा पीना पड़ेगा, इम्पोर्टेड जल आएगा महाराज आपके लिए। आज से सरलता से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि संसारी मनुष्य जो है इस संसार में ज्ञात्वा अज्ञात्वा, समझे या बिना समझे जो है कर्म करने के लिए प्रारंभ हो जाता है महाराज, वो कर्म करना प्रारंभ कर देता है। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि, कहते हैं ऐसा जो कर्म करने वाला पुरुष है वो समझ बूझ कर कर्म करने वाले जैसे विदुषाह कर्म सिद्धि, उन्हीं कर्मों को जब विदुष पुरुष करता है तो महाराज उसको उन्हीं कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तथा ना विदुषो भवेत, लेकिन जो अविवेकी पुरुष जब उन्हीं कर्मों का को साधन बनाता है, क्योंकि उसने बुद्धि का सहारा नहीं लिया या पूर्व अपर के विचार के बगैर वो कर्म कर डाले, तो उसका परिणाम ये होता है कि उन कर्मों से उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। इसलिए ये जो नासमझी का स्वरूप है मैं ये जानना चाहता हूं, तत्र तावत् क्रियायोगो भवताम किम विचारिता अथवा लौकिक तन्मे पृच्छता साधु भण्यताम। भगवान कहते हैं इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप क्रिया करने जा रहे हैं ये सुहृदों के द्वारा विचारित है, शास्त्र सम्मत है, अथवा केवल लौकिक मात्र ही है। लौकिक का मतलब जो हमारी बहुत सी व्यर्थ की परंपराएं जिनका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है, बिना सिर पैर की परंपराओं को हम लोग अक्सर इस संसार में क्या करते रहते हैं, ढोते रहते हैं कि नहीं ढोते रहते हैं? जैसे आप साधारण सी भाषा में अगर समझाया जाए तो उसका नाम है दहेज, है ना? दहेज हमारे लिए क्या बन गया इस समय, देवता है कि राक्षस है? जिसके पास धन है उसके लिए ये दहेज देवता है, और जिसके पास धन नहीं है उसके लिए ये दहेज राक्षस है। अब वो कर्जा लेके महाराज दूसरे की देखा देखी कर्म करे तो क्या होगा, उसका परिणाम आप लोग पेपर में टीवी में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कभी पूरा का पूरा परिवार जहर खा के मर जाता है, कभी एक व्यक्ति जहर खा के मर जाता है। और ऐसा दुर्लभ हो मानुषो देहो, यानी देवताओं को भी जो शरीर दुर्लभ है, उस शरीर को हम एक तुच्छ कार्य के लिए क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये कर्म की गति है, ध्यान देना। इतना सुंदर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कराने वाला शरीर, ये नौका जो महाराज एक साधारण से कर्म में जहर खा के दो पैसे के जहर ने हमको क्या कर दिया। ये जो गहना कर्मणो गति, योगा कर्मसु कौशलम भगवान कहते हैं, ये जो दशा दिखाई गई भगवान इसलिए जानना चाहते हैं, या केवल लौकिक रीत से ही जो चली आ रही परंपराएं हैं केवल आप उन्हीं को ढो रहे हैं, या कोई शास्त्र सम्मत कार्य कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। जब भगवान ने जो है इस प्रकार से अपनी बात को रखा तो महाराज नंद बाबा ने समझाना शुरू किया कि पुत्र परजन्यो भगवन्दो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। दूसरे पक्ष को भी जरा सुनो, नंद बाबा क्या कह रहे हैं। और भगवान ने तो अपनी बात समझा दी कि मैं क्या जानना चाहता हूं, लेकिन नंद बाबा कहते हैं बेटा ये इंद्र भगवान जो है ये मेघों के स्वामी हैं, वर्षा के स्वामी हैं, और मेघ उन्हीं की कृपा से समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले, जीवनदायिनी जल बरसाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे पुत्र तम तात वयमन्ने चा वर्मचाम पतिमीश्वरम द्रव्यैश तद्रेतसा सिद्धैर यन्ते कृतभिर्नरः। हमको जो कुछ भी, जो दूसरे लोग भी जो है उन्हीं मेघपति इंद्र की यज्ञों के द्वारा जो पूजा करते हैं, तो जो सामग्रियां हमको ये प्राप्त हुई हैं जिनसे हम उनका यज्ञ करने जा रहे हैं, ये सारी यज्ञ की सामग्रियां भी उस वर्षा यानी इंद्र की कृपा से ही प्राप्त होती है। और जब शक्तिशाली मेघ अपना जल बरसाते हैं तो महाराज उनसे जो है ये हमको प्राप्त होता है, और इसके परिणाम तया हम उनको प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के बाद में जो हमको बचता है कहते हैं तच्छेषेणोपजीवंती त्रिवर्ग फल हेतवे। यानी हमारा जो जीवन है तीन प्रकार का, धर्म अर्थ और काम, है ना, ये जो मनुष्य शरीर हम लोग लेके घूम रहे हैं, इन मनुष्य शरीर से हम तीन ही चीज साधते हैं, एक का नाम है अर्थ, दूसरे का नाम है धर्म, और तीसरे का नाम है काम, और चौथा तो महाराज पुरुषार्थ रहित मुक्ति की इच्छा या मोक्ष कहलाता है। तो वो यहां पर नहीं आता है इन सब चीजों के अंतर्गत। तो धर्म अर्थ और काम को भोगने के लिए, इस त्रिवर्ग के उपयोग के लिए हम उस यज्ञ से बचे हुए का उपयोग करते हैं। महाराज कहते हैं जितने भी मनुष्य के ये खेती आदि प्रयत्न हैं, इनको फलीभूत करना ये सब इंद्र के ऊपर ही भी है, ऊपर ही है। कहते हैं या एवं विसृजेत धर्मम पारंपरायागतम नरा काम लोभात भयात द्वेषात संसावय नापनोति शोभनम। कहते हैं ये हमारे कुल की परंपरा है, कहते हैं ये हमारे धर्म और कुल की परंपरा से चला आया है। और जो मनुष्य अपने कुल की परंपरा को काम के भय से, लोभ के भय से, क्रोध के भय से, जो है काम लोभाधिक के भय से, द्वेष के भय से, इस परंपरा को यानी धर्म को छोड़ता है, काम लोभात भयात द्वेषात सावय नापनोति शोभनम, उसको कभी मंगल नहीं होता। इसलिए इस परंपरा को निभाना अति आवश्यक है, और इसलिए हम इंद्र यज्ञ की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये किसका पक्ष है, हाँ ध्यान देना। यानी कहने का तात्पर्य है, एक तरफ है समाज, बहुत समझने की चीज है ये, और एक तरफ है अध्यात्म। क्यों भाई, समाज आपको अपनी ओर खींचता है, समाज कहता है कहां जाओ, नरक में जाओ, समाज क्या कहता है, नरक में जाओ, और अध्यात्म कहता है कि नरक स्वर्ग सबको छोड़कर आनंद में जाओ। क्यों भाई, बिल्कुल हृदय से बताओ, आपको किसकी बात समझ में आती है, हैं? क्यों भाई, दोनों पक्ष आपके सामने हैं। भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक क्रिया कर रहे हो या शास्त्र सम्मत कर रहे हो। आप अपने जीवन को देख के बताओ कि आप शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हो या लौकिक जीवन जी रहे हो, हैं? 100%, हैं? हम तो महात्माओं को भी उसी में क्या कर देते हैं। कबीरदास ने बड़ा सुंदर दोहा कहा हमारा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। महात्मा से भी हम कहते हैं कि हम रो रहे हैं, तुम भी क्या करो, रो। आनंद के सागर भगवान से भी हम अपने दुखों का आईना दिखा के कहते हैं, प्रभु मैं दुखी हूं तो तुम भी मेरे संग क्या हो जाओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो यही? अरे यही चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यही चाहते हो महाराज। आप ये चाहते हो कि अगर हमारे घर में दुख आए, हमारे शरीर में दुख आए, तो महात्मा भी आपको देख के हंसे या दुखी हो? बिल्कुल शुद्ध भाषा में बताओ, क्यों भाई? आपके पैर में दर्द हो रहा हो और आप हाय हाय कर रहे हो और महात्मा कहे वाह बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद है। बोले जाओ महाराज, आप अपना काम करो जाके, हैं? हम अपनी पीड़ा से रो रहे हैं और आप जो है कह रहे हो आनंद ही आनंद है। चलेगा? हाँ। तो ये लौकिक शरीर और महाराज अलौकिकता, दोनों चीजों को समझना अति आवश्यक है। एक तरफ भगवान चाहते हैं जानना कि ये क्या है, दूसरी तरफ नंद बाबा कह रहे हैं ये हमारे वर्षों की परंपरा है, आज की नहीं है, हमारे बाप दादाओं से ये यज्ञ चला आ रहा है। जब भगवान ने इस प्रकार से श्रवण किया महाराज, तो भगवान ने फिर जो है क्या कहना प्रारंभ किया, जो हम लोगों ने अभी गीता के माध्यम से कर्मों की स्थिति को जाना, भगवान ने क्या समझाया है महाराज, वो समझने योग्य है। ये तो गोवर्धन लीला तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ऐसे पागल की तरह सुनिए, कभी ध्यान नहीं दिया। बोले भगवान ने जो है गोवर्धन उठा लिया, 56 भोग लगा दो और सारा ध्यान आपका काजू की बर्फी की तरफ। बोले गिरधर गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसका परिणाम ये है कि जैसे एक सांसारी व्यक्ति दुखी, वैसे एक सत्संगी दुखी, तो फिर हमारे सत्संग करने का कोई फायदा हुआ? नकली नोट लेके घूम रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।